दिन भर 5 जुलाई दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फजल। भारत और इसराइल के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों प्रधानमंत्रियों ने साझा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
Our people hold natural affinity and warmth for each other. The Indian origin.
पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में सांप्रदायिक तनाव की खबरें। बात करेंगे भारतीय कश्मीर में फिल्में बनाने के बढ़ते शौक की भी।
जो आपकी सुबह से शाम तक जिंदगी गुजरती है उसका रिफ्लेक्शन तो आएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट के तरीके से आए, इंसानियत के किसी पहलू से आए, कोई भी मसला, कोई जुल्म हो रहा है किसी के साथ।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसराइल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति रिवलिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी का स्वागत किया। मोदी ने इसे भारत के लोगों के प्रति सम्मान बताया। भारतीय प्रधानमंत्री ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को भारत आने का न्योता दिया है। मोदी आज भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित करने वाले हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि रूस और चीन उत्तर कोरिया के परमाणु मुद्दे का ताकत के दम पर समाधान किए जाने से जुड़े किसी भी कदम के विरोध में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश उत्तर कोरिया की आर्थिक तौर पर घेरेबंदी की कोशिश के भी खिलाफ हैं। उत्तर कोरिया ने कल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। इसके बाद अमरीका और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन उत्तर कोरिया को रोकने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहा है। अमरीका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है कि संघर्ष की संभावना को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। दक्षिण कोरिया में मौजूद दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण कोरिया का खुद पर काबू रखना ऐसा फैसला है जिसे किसी भी वक्त बदला जा सकता है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ में पब्लिक अफेयर के चीफ रो जे जंग ने कहा कि अमरीका और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के सैन्य ताकत प्रदर्शन के खिलाफ एकजुट हैं। उन्होंने कहा,
इबन हम्मी यनप मिसाइल सायगन पुखने।
दक्षिण कोरिया और अमेरिका की ओर से संयुक्त मिसाइल परीक्षण अभ्यास दोनों देशों की इस भावना को जाहिर करता है कि वो उत्तर कोरिया की ओर से उकसावे वाली किसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये थे रो जे जंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीन ने भारत पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पीटीआई के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गंगशुआंग ने कहा है कि भारत का ये कहना ठीक नहीं है कि चीन के भूटान की सीमा के करीब सड़क बनाने से उत्तर पूर्व के राज्यों में उसकी पहुंच मुश्किल हो जाएगी। भारत ने इस सड़क के निर्माण पर चिंता जाहिर की है। जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा है कि उनका देश चाहता है कि दोनों देशों का एक दूसरे के बाजार में बराबर का दखल हो। बर्लिन में एक साझा संवाददाता सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को नई गति मिल रही है। वहीं मर्केल ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ती देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा, दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते बढ़े हैं। हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी हमारे साझेदारी का विस्तार हुआ है। इसलिए आज की बातचीत में इंडस्ट्री 4.0 और चाइना 2025 की अहम भूमिका रही है। हमें इसमें साझेदारी को और आगे ले जाना है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के बाजार में समान दखल चाहते हैं। ये थे एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन के विदेश मंत्री कतर विवाद को लेकर काहिरा में बातचीत कर रहे हैं। इन देशों ने करीब एक महीने पहले कतर के साथ कूटनीतिक संबंधों पर रोक लगा दी थी। साथ ही हवाई, सड़क और समुद्री संपर्कों पर भी रोक लगा रखी है। इन देशों ने कतर पर चरमपंथी संगठनों को मदद देने और ईरान के साथ ज़्यादा नज़दीकी होने का आरोप लगाया है। कतर इन देशों की ओर से लगाए गए आरोपों को गलत बताता रहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। इसराइल में अपनी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। दोनों देशों ने कृषि और अंतरिक्ष समेत 7 समझौतों पर दस्तखत भी किए हैं। मुलाकात के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया है। नरेंद्र मोदी बोले,
Our people hold natural affinity and warmth for each other. The Indian origin Jewish community reminds us of this bond.
हमारे लोगों के बीच स्वाभाविक नजदीकियां और गर्मजोशी है। भारतीय मूल का यहूदी समुदाय हमें इन रिश्तों की याद दिलाता है। ये एक साझा भविष्य की ओर चलने के लिए एक पुल का भी काम करता है। आइए सीधे चलते हैं तेल अवीव हरेन मिश्रा के पास। सबसे पहले ये बताइए कि दोनों देशों के बीच किन किन समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है हरेन मिश्रा से। थोड़ी देर बाद हम फिर से संपर्क करेंगे उनसे संपर्क स्थापित करने की। लेते हैं दूसरा विषय। सोशल मीडिया पोस्ट से भड़की हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में बसीरहाट में धारा 144 लागू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर 24 परगना जिले में सांप्रदायिक हिंसा पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले बदुरिया में इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है और अर्धसैनिक बल BSF के 400 जवान वहां भेजे गए हैं। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने इस मामले पर उन्हें फोन पर धमकाया है। थोड़ी देर पहले मैंने स्थानीय पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी से पूछा कि इस गड़बड़ की शुरुआत किस तरह हुई।
दरअसल एक 11वीं कक्षा के छात्र ने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, तो धीरे धीरे जब ये मामला इलाके में फैला तो उसके बाद ही लोगों की भीड़ जुटने लगी और उसके बाद एक तबके के खिलाफ उनका गुस्सा भड़का और जगह जगह आग यानी और हिंसा की बातें शुरू हो गई। तो पुलिस ने, ये रविवार की घटना है, पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया उस लड़के को, लेकिन इसके बावजूद भीड़ का गुस्सा बढ़ता रहा और दर्जनों मकाने दुकान तमाम जला दिए गए और पुलिस जब मौके पर पहुंची उस पर भी पथराव किया गया। इवन थाने पर भी हमला कर दिया गया, कई गाड़ियां जला दी गई और 2 दिनों तक ये सब चलता रहा। रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार को भी काफी हिंसा और आग जमी।
और इस समय कैसी स्थिति है? इस समय हिंसा रुक गई है या अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है? क्या स्थिति है इस समय?
धारा 144 तो 2 दिन पहले से ही लागू थी, बावजूद उसके हिंसा रुक नहीं रही थी, लेकिन कल रात को सीमा सुरक्षा बल की 4 कंपनियां पहुंची और उन्होंने देर रात को फ्लैग मार्च किया। आज भी गश्त लगा रहे हैं यहाँ, तो अब नए सिरे से कोई हिंसा आज कम से कम नहीं हुई है। और लेकिन इलाके में भारी तनाव है, आज स्कूल कॉलेज और बाजार भी सब बंद रहे और सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगा दी है इलाके में। आज यही हुआ कि कुछ लोगों ने रेल की पटरियों पर धरना दिया, इससे उस तरफ जाने वाली जो लोकल ट्रेनें हैं उनकी सेवाएं ठप रही।
इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं राज्यपाल पर उनको धमकी देने के।
जी हाँ, कल इसी मुद्दे पे हिंसा जो हुई, इसी मुद्दे पे BJP के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल से शिकायत की और हिंसाग्रस्त इलाकों की तस्वीरें वगैरह दी, तो उसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से बात की कि ये क्या हो रहा है और अब तक 2 दिनों से हिंसा क्यों नहीं थम रही है। तो इसी पर दोनों के बीच कुछ गर्मा गर्म बहस हुई, तो उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि राज्यपाल ने मुझे धमकी दी है, उनको बात करने की तमीज नहीं है और इस तरह से बात नहीं की जाती है। तो लेकिन उसके बाद फिर राज्यपाल ने 2-3 घंटे बाद ही एक बयान जारी कर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस उनसे कानून व्यवस्था के बारे में पूछा था।
ये थे स्थानीय पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो नोटबंदी मामले में उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करे जो किसी खास परिस्थिति की वजह से 500 और 1000 रुपए के नोट बैंकों में जमा नहीं करवा पाए थे। अदालत ने यह हुक्म नोटबंदी से जुड़े कुछ मामलों की सुनवाई करते हुए दिया। ये मामले अलग अलग लोगों के जरिए अदालत में दर्ज किए गए थे। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
72 साल की सरला श्रीवास्तव के पति एक हादसे में अपनी याददाश्त लगभग खो चुके थे। फिर कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक घर में साल भर किसी तरह का कोई उत्सव नहीं मनाया गया, लेकिन उसके बाद जब घर की सफाई और सफेदी का काम हुआ तो एक ड्रम से सरला को करीब 179,000 रुपये मिले। ये जनवरी 2017 के दूसरे हफ्ते का वक्त था। नोटबंदी के सिलसिले में बंद किए गए पुराने 500 और 1,000 के नोटों को बैंक में जमा करने की समय सीमा खत्म हो गई थी। सरला श्रीवास्तव के बेटे सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि हालांकि पहले कहा गया था कि जो लोग बैंकों में पैसे डिपॉजिट नहीं करवा पाए हैं वो 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट आरबीआई में जमा कर सकेंगे, लेकिन आरबीआई ने भी इन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। सुदीप श्रीवास्तव कहते हैं,
प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी भी लिखी गई, प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी के यहाँ से जवाब आया कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आपके मामले को देखेगा, और जब कुछ नहीं हुआ तो मार्च के पिटीशन फाइल की गई थी, 10 मार्च 2017 को नोटिस भी इशू किया गया।
पंजाब के किसान मलविंदर सिंह का केस भी कुछ इस जैसा ही था। उनके वकील प्रणव सचदेवा का कहना था,
अप्रैल 2016 में गए थे और फरवरी 2017 में वापस आए।
ठीक है,
जो डीमोनेटाइजेशन का टाइम है 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक, ड्यूरिंग दैट पीरियड ही वाज आउट। तो उस टाइम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी थी जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि जो लोग इस दौरान नहीं जमा करा सकते उनको बाद में मौका दिया जाएगा और वो 31 मार्च तक आरबीआई में जाके करवा सकते हैं।
प्रणव सचदेवा ने बताया कि उनके मुवक्किल ने जब पैसे आरबीआई में जमा करवाने की कोशिश की तो केंद्रीय बैंक ने ऐसा करने से ये कहकर मना कर दिया कि उनका मामला एनआरआई कोटे में नहीं आता है, इसीलिए वो पैसे जमा नहीं कर सकते हैं। मंगलवार को 10 ऐसे अर्जियों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि आप किसी के पैसे उससे जबरन किस तरह ले सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर ने हुक्म दिया है कि सरकार अपना पक्ष 2 हफ्ते में दाखिल करे। हालांकि सुदीप श्रीवास्तव अभी भी बहुत आश्वस्त नहीं दिखते हैं।
जहां तक ये सवाल है कि पैसे जमा हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख तो बिल्कुल दिखता है कि वो लोगों के ग्रीवियांस को समझ रहा है, लेकिन सरकार का रवैया बहुत अब तक अड़ियल रहा है।
मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
बेंगलोर के एक होटल ने एक दंपत्ति को सिर्फ इसलिए कमरा नहीं दिया क्योंकि दोनों के धर्म एक नहीं थे। केरल से आई हिंदू महिला के साथ उसका मुस्लिम पति आया था क्योंकि उस महिला को एक लॉ स्कूल में साक्षात्कार देना था। होटल के मालिक ने हालांकि इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि उनको धार्मिक आधार पर कमरा न देने का फैसला किया गया। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
एक जमाना था जब किसी आईडी कार्ड के बिना किसी भी दंपति को एक होटल में रूम मिल जाती थी। होटल के रजिस्टर में जो भी लिखना होता था वो लिखा जाता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। पुरुष और महिला को अपना अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है और इसी से बवाल मचा है बेंगलुरु की ऑलिव रेजिडेंसी होटल के एक कर्मचारी के सवालों से। वो क्या सवाल थे, सुनिए केरला के कोलिकोट से आए हुए शफीक हकीम से।
सर, एक्चुअली यस्टरडे माय स्पाउस दिव्या हैड एन इंटरव्यू इन नेशनल लॉ स्कूल।
मैं और मेरी पत्नी दिव्या बेंगलुरु पहुंचे सुबह 6:30 बजे और एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हमें इस होटल में ले आया। रिसेप्शनिस्ट ने रूम दिखाया और हम दोनों का आईडी कार्ड मांगा। आईडी कार्ड देखते ही उसने कहा कि रूम नहीं दिया जा सकता, और जब हमने सवाल पूछा तो वह जवाब दिया कि हम मुस्लिम और हिंदू हैं। हमें ताज्जुब हुआ और हमने पूछा कि क्या यह होटल की पॉलिसी है। ये थे शफीक हकीम के शब्द। लेकिन होटल के मालिक शिव माधु इस व्याख्या का एक परस्पर विरोधी तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने कहा,
एक लड़का एक लड़की आया था इधर कल सुबह, दोनों मिला कि एक आधा घंटे के लिए रूम पूछा। उन लोग के पास लगेज भी नहीं था और प्रॉपर आईडी भी नहीं था। लड़का का अलग आईडी है, लड़की का अलग आईडी है, दूसरा दूसरा जगह का था। क्या पर्पज के लिए आया करके पूछा, तो इंटरव्यू के लिए आएगा, हम लोग इसलिए आधा घंटे के लिए रूम पूछा। इंटरव्यू का इंटीमेशन कार्ड रहेगा ना, वो दिखाओ ना, रूम देगा करके हमारा कैशियर ने पूछा है। इंटरव्यू इंटीमेशन कार्ड नहीं करके बोला है, ये रूम देने के लिए मना किया इसलिए वापस भेजा। वो लड़का ने ऐसे गया, लड़की हमारा कैशियर के साथ झगड़ा करके वो गया। वो
दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं का रिसेप्शनिस्ट ने एक न्यूज वेबसाइट को बताया है कि उसने इसलिए रूम नहीं दिया क्योंकि वो दो अलग धर्म के हैं और रूम में आत्महत्या कर लिए तो क्या होगा। शफीक होटल के मालिक के बयान को सरासर खारिज करते हुए कहते हैं,
वन इज ही इज टोटली सेइंग लाइज, थ्री ही इज लाइज बिकॉज़ ही हैज टू एस्केप फ्रॉम द इश्यू।
वो सरासर झूठ कह रहे हैं। अगर हमारे पास लगेज नहीं है तो वो क्या रूम नहीं देते हैं? इस तरह के सवाल तो वहां उठे ही नहीं। वो अभी हेर फेर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे शफीक हकीम के शब्द। शफीक अभी कानूनी सलाह लेने के बाद पुलिस कंप्लेंट दर्ज करने के बारे में सोच रहे हैं। बहरहाल मामला वही है कि जमाना बदल रहा है। शायद होटल के रूम में कौन रह सकता है और नहीं रह सकता है उस पर भी नए तरह के नियमों का इंतजार करना पड़ेगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की प्रमुख घटना थी जब भारत की मिसाइल बोटों ने कराची बंदरगाह पर हमला कर न सिर्फ पाकिस्तानी पोतों को डुबोया था बल्कि वहां के पेट्रोल डिपो में आग लगा दी थी। इन हमलों में भाग लेने वाले कमांडर बीएन कवीना का पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। कवीना को उनकी वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मैंने मनु पबी से संपर्क कर पूछा कि कमांडर कवीना की 1971 में कराची पे किए गए हमले में क्या भूमिका रही थी।
ये नेवी के वन ऑफ द बिगेस्ट हीरोज माने जाते हैं। तो जो 1971 वॉर में नेवी का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, इनफैक्ट उनका पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा ऑपरेशन उनका एक ही रहा है। तो कराची हार्बर जो कि पाकिस्तान का मेन पोर्ट था जहाँ से उनको सारी सप्लाई आती थी, उस पे कवीना जी ने अटैक किया था। तो कवीना जी और उनके दो साथी और थे, तीन शिप्स में गए थे ये लोग 4 दिसंबर 1971 में अटैक करने के लिए। ये रशियन बोट्स थी, ओसा क्लास बोट्स थी। ही वॉज लीडिंग, जो नंबर वन बोट थी वो कवीना जी की थी। तो ऑपरेशन काफी मुश्किल था क्योंकि कभी ऐसा ऑपरेशन इंडिया ने कभी किया ही नहीं था कि आप बिल्कुल पाकिस्तान कोस्ट पे जाएं और मिसाइल मारें और अटैक करके आ जाएं। तो पाकिस्तान बिल्कुल ही सरप्राइज रहा इस अटैक से। तो 4 दिसंबर की रात को कवीना जी अपनी बोट लेके इंडिया से निकले एंड विद इन 50 किलोमीटर की रेंज कराची के आ गए। बिल्कुल रात को गोपन देरा था, कोई किसी को मालूम नहीं चला कि ये लोग चुपचाप से पहुंचे हैं। फिर उन्होंने एक पाकिस्तानी शिप पे हमला किया, एक पाकिस्तानी माइंस पीपर थी उसको उड़ा दिया। वहीं तक खत्म नहीं हुआ, इनके साथी थे दो और, वो लोग अपनी मिसाइल मार के वापस आ गए। बट कवीना जी की जो शिप थी वो और आगे ले गए 25 किलोमीटर तक की रेंज में कराची में, और कराची के अंदर एक ऑयल डिपो था उस पर भी अटैक करके आए। तो जब उन्होंने मिसाइल अटैक कराची डिपो पे किया तो कराची के पोर्ट में आग लग गई। तो वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट था वॉर का कि इंडिया ने कराची को उड़ा दिया। उसके लिए उनको वीरता चक्र मिला, वीर चक्र का अवार्ड हुआ उनको इसके ऊपर।
और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या कराची पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया? नेवल ब्लॉकेड हो गया कराची का?
हाँ जी, हाँ जी। सो 1971 की जो वॉर है जहाँ जो हम जानते हैं वो पूरी लैंड के ऊपर हुई थी, लेकिन पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम था कि उनको जितनी भी सप्लाई आती थी, ऑयल कर लीजिए, एम्यूनिशन, मेडिसिन, उनको सारे कराची पोर्ट से आते थे क्योंकि फ्लाइट से अब इतना आप सामान ला नहीं सकते हैं और बाय लैंड तो सारे रूट ब्लॉक किए हुए थे इंडिया ने। तो उनका सारा सामान जो उनके दोस्त थे, वेस्टर्न दोस्त थे उनके, और उनके इवन सऊदी और गल्फ में जो दोस्त थे, वो उनको सारी सप्लाई सिर्फ कराची से करा सकते थे। तो कराची को ब्लॉक करने से आपने एकदम से उनको चोक कर दिया पाकिस्तानियों को, क्योंकि उनसे जब वो ऑयल नहीं ले पाते, जब वो नई एम्यूनिशन नहीं ले पाते, तो वो जो लड़ाई करने की उनकी क्षमता है वो महीनों से कुछ हफ्तों या कुछ दिनों में गिर गई।
और अभी जो CIA के पेपर्स डी क्लासिफाई हुए हैं, उन लोगों ने इसको, इस पूरी चीज को किस तरह से लिया? अगले दिन रिचर्ड निक्सन को क्या ब्रीफिंग दी CIA ने?
हाँ जी, देखिए अभी तक हमको जो मालूम था सिर्फ इंडियन हिस्ट्री से मालूम था, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में काफी अच्छी तरह मैप हो गया था कि हमने अटैक किया, उसका इम्पैक्ट ये रहा कि पाकिस्तानी नेवी निकल नहीं पाई और उनका पोर्ट ब्लॉक हो गया। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि CIA पेपर्स में। तो अगले दिन, जिस दिन उन्होंने रात को 4 बजे अटैक किया, अगले दिन सुबह 5 बजे प्रेसिडेंट निक्सन की डेली मॉर्निंग ब्रीफिंग होती थी CIA के थ्रू। तो उस टाइम पे बहुत कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उनकी ब्रीफिंग काफी अलग चीजों पे होती थी, बट पहली बार ऐसा हुआ कि टॉप ब्रीफिंग उनकी इसी अटैक के ऊपर थी कि इंडिया ने अटैक कर दिया है, कराची हार्बर रुक गया है और उसके के पाकिस्तान का हाल काफी खस्ता है। उसके बाद एक तो ब्रीफिंग हुई, उसके बाद एक CIA ने एक रिपोर्ट कमीशन की अपने टॉप लोगों से पता करने के लिए कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो एक रिपोर्ट उन्होंने निकाली ऑन पाकिस्तान रिसप्लाई प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, में उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है, 17 पेज की रिपोर्ट है, जिन्होंने उन्होंने पाकिस्तान की फ्यूल सिचुएशन, उनकी एम्युनिशन सिचुएशन, उनकी मेडिसिन सिचुएशन को एनालाइज किया है और कंक्लूड ये किया है कि अनलेस कराची का ब्लॉकेट हटाया जाए तो पाकिस्तान लड़ाई नहीं कर पाएगा। और इनका जो ये एनालिसिस था, ये था कि पाकिस्तान का फ्यूल भी खत्म होने वाला है, उनकी एम्युनिशन भी खत्म होने वाली है, उनके जो पार्टनर्स हैं सऊदी हो गया, चाइना हो गया, इवन वेस्टर्न पावर्स हो गई, कोई भी उनको सम्मान नहीं पहुंचा पाएगा। उन्होंने ये भी कंक्लूड किया था कि पाकिस्तान के पास बाहर से सप्लाई लेने का पैसा काफी है, फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी है, लेकिन सामान पहुंचाने का जरिया नहीं है उनके पास कोई, जब तक ये कराची का ब्लॉकेट लटका हुआ है।
1971 में कराची पर भारतीय नौसेना के हमले में कमांडर कवीना की भूमिका के बारे में बता रहे थे मनु पब्बी। कमांडर कवीना का पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया था।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा की। हमारा संपर्क हरिन मिश्रा से टूट गया था, संपर्क अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए हैं वात्सल्य राय। वात्सल्य, आपके पास क्या विवरण है, किन किन मुद्दों पर समझौते हुए हैं इसराइल के साथ?
जी रियान साहब, जिस तरह से ये ऐतिहासिक दौरा है और दोस्ती के सात रंग इंद्रधनुष में जैसे सात रंग होते हैं, वैसे ही सात रंग दोस्ती के भी नज़र आ रहे हैं और समझौते भी साथ हुए हैं, जिसमें कृषि है, विज्ञान तकनीकी को लेकर दोनों देश साथ काम करने पर सहमत हुए हैं। और दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के बाद जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो जानकारी दी गई है कि भारत और इसराइल औद्योगिक शोध, विकास और नवचार के लिए $4 करोड़ का एक कोष बनाने पर सहमत हुए हैं। जो संवाददाता सम्मेलन हुआ, उसमें मोदी ने कहा कि भारत हिंसा और चरमपंथ के खतरे झेलता रहा है और दोनों ही देश अपने सामरिक हितों की रक्षा करने पर भी सहमत हुए हैं। इसके अलावा मोदी ने ये भी जानकारी दी, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि पश्चिम एशिया और समग्र क्षेत्र के हालात पर दोनों देशों ने बातचीत की है। तो केवल बातचीत जो हुई है दोनों प्रधानमंत्रियों की, वो भारत और इसराइल की नहीं हुई है, पूरे मध्य पूर्व को लेकर उन लोगों ने बातचीत की है। और भारत की तरफ से मोदी ने कहा कि वो शांति, संवाद और संयम की आशा रखते हैं।
ये बताइए, ये तो रही नेतन्याहू से हुई बातचीत और समझौते, लेकिन उनका और क्या कार्यक्रम है? पहले बताया गया था कि वो मोशे से मिलने वाले हैं।
जी बिल्कुल, बेबी मोशे, जो 2008 में मुंबई में चरमपंथी हमला हुआ था, बेबी मोशे उस हमले के सर्वाइवर हैं, जो कि फ़िलहाल इसराइल में रहते हैं और नरेंद्र मोदी ने उनसे ख़ास तौर पर मुलाकात की। उस समय वो 2 साल के बच्चे थे, लेकिन अब वो 10 साल के हो गए हैं। उन्हें बचाने में उनकी आया का बड़ा रोल था और मोदी उनसे बड़े प्यार से मिले और मोशी ने भी उनसे बड़े प्यार से बातचीत की। और मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि डियर मिस्टर मोदी, मैं आपको और भारत के लोगों को प्यार करता हूँ, आई लव यू कहा उन्होंने मोदी को। और उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छा छात्र बनने की कोशिश करूँगा, प्लीज़ मुझे इसी तरह प्यार करते रहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी मुंबई आ सकूँ। वो मुंबई जो उन्हें डरा सकता था, लेकिन इस मोहब्बत की वजह से आज उनके विचार बदले हुए नजर आते
हैं। क्या बात है, बहुत खूब और बहुत बहुत धन्यवाद वात्सल्य आपका। भारत प्रशासित कश्मीर में फिल्म बनाने का शौक जोर पकड़ रहा है। कश्मीर घाटी में तनाव जारी है, स्थानीय फिल्मकारों के फिल्म फेस्टिवल में कश्मीर और कश्मीरियों के हालात की अक्कासी इन फिल्मों के जरिए की जा रही है। आज से 27 साल पहले घाटी में हथियारबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से ही फिल्म हॉल बंद हैं, लेकिन लोग किसी न किसी तरह फिल्म देख ही लेते हैं। लेकिन अब घाटी के नौजवान फिल्मकार कश्मीर को बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
नाटकों और नाटिक कथाओं के लिए मशहूर श्रीनगर का टैगोर हॉल आजकल एक मूवी थिएटर लग रहा है। 14 से 27 वर्ष की उम्र के युवाओं के लिए मूवी थिएटर केवल एक मीठी याद है जिसके बारे में वो सिर्फ अपने बड़ों से सुनते थे। जाने माने कश्मीरी अभिनेता और फिल्म निर्माता मुश्ताक अली खान ने चंद दिनों के लिए टैगोर हॉल को सिनेमा हॉल में बदल दिया। हिंसा और मारधाड़ के बीच पलने वाली युवा पीढ़ी भी चाहती है कि इन्हें दूसरों की कला देखने और अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिले।
ऐसे शोज, ऐसे इनिशिएटिव्स जब लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली यूथ को लगता है कि नहीं, इस फील्ड में कुछ है और इस फील्ड में आगे कुछ करने को मिलेगा।
हमें तो नहीं पता, बट हमने जो पेरेंट्स से सुना है कि किस तरह से सिनेमाज होते थे, किस तरह से मूवीज देखते थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज का असर दिखा हमें।
हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो न्यू टैलेंट है रिगार्डिंग फिल्म, तो उसके बारे में हमें जानने को मिला।
टैगोर हॉल में 5 दिन से जारी फिल्म फेस्टिवल में 60 स्थानीय फिल्मों की एंट्रीज थी, जिनमें से 25 को स्क्रीनिंग के लिए चुना गया। ये फिल्में सामाजिक समस्याओं जैसे नशा, करप्शन और प्रदूषण जैसे मुद्दों को लेकर बनाई गई है। फेस्टिवल के व्यवस्थापक मुश्ताक अली खान कहते हैं कि कश्मीर में कहानियों की कमी नहीं है।
जो आपकी सुबह से शाम तक जिंदगी गुजरती है उसका रिफ्लेक्शन तो आए, वो कॉन्फ्लिक्ट के तरीके से आए, इंसानियत के किसी पहलू से आए, कोई भी मसला, कोई जुल्म हो रहा है किसी के साथ, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है किसी तरीके से, कहीं पे ताकत का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, वो कोई भी शख्स हो, तो उसको रिफ्लेक्शन इंसान लड़ नहीं सकता, लिख सकता है।
कश्मीरी छात्रा जायरा वसीम ने दंगल फिल्म में बेहतरीन कला का प्रदर्शन करके खूब नाम कमाया है। राजौरी जिले की अलीना मुगल भी बॉलीवुड में कदम जमा रही है।
दूर के अंकल थे, उनके घर में टीवी थी, तो हम लोग वहाँ पे टीवी देखने जाते थे कभी कभी। तो वो मूवी देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये काम मुझे करना चाहिए, ये मेरा काम है जो मुझे करना है। सो घर वाले मुझे जब बोलते थे कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या करना चाहते, तो मैं बोलती थी मुझे एक्ट्रेस बनना है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी सिनेमा होने चाहिए, और यहाँ पर सिनेमा तभी हो सकते हैं जब यहाँ पर पीस होगा। यहाँ पर अगर फाइट होते रहेंगे, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहें, तो सिनेमा तो बन ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। अगर हम घर में अपने टीवी देख सकते हैं तो हम थिएटर में जाके फिल्म क्यों नहीं देख सकते।
फिल्म निर्माताओं का कहना है कि अगर भारत में भोजपुरी, तमिल और तेलुगु सिनेमा की धूम है तो कश्मीरी सिनेमा भी उभर सकता है। फेस्टिवल में जब छात्रों और छात्राओं ने फुल लेंथ कश्मीरी फीचर फिल्में देखी तो इन्हें ये सब संभव लगने लगा। 27 वर्ष पहले घाटी में सिनेमा हॉल्स बंद किए गए थे, कई वर्ष से स्थिति भी अस्त व्यस्त है। कर्फ्यू, हड़तालों और इंटरनेट पर प्रतिबंधों से प्रतिभाशाली युवा भी प्रभावित होते हैं।
सारी उम्र हम मरमर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी यहाँ के लड़के और लड़कियाँ जमकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
और अब नजर दौड़ाते हैं खेल समाचारों पर। सबसे पहले जिक्र विश्व महिला क्रिकेट का, जहां आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से हो रहा है। विदित मेहरा इस मैच पर नजर रखे हुए हैं। डर्बी में यह मैच है, क्या है ताजा समाचार?
ताजा समाचार ये है कि 16 ओवर हो चुके हैं और 53 रन बनाए हैं श्रीलंका की टीम ने, और एक विकेट उन्होंने अब तक खोई है। और भारत की अगर बात करें तो 232 रन बनाए थे उन्होंने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर। और जो सबसे अच्छा खेल का प्रदर्शन आज जो किया है वो शर्मा जी ने किया है, DB शर्मा, जिन्होंने 78 रन बनाए हैं 110 बॉलों पर। और स्मृति मंधाना, जो कि पहले दो मैचेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और पाकिस्तान के विरुद्ध भी वो ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाई, वो 2 रन बना के आउट हो गई, आज भी वो सिर्फ 8 रन बना पाई। और मिताली राज, जो कि पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 71, फिर 46, फिर 8, और आज उन्होंने 53 रन बनाए, तो बहुत ही अच्छा खेल दिखा रही है टीम इंडिया। और श्रीलंका भी अभी तक खेल रही है, लगता है कि जीत सकती है अगर वो बनी रहे तो।
बहुत संक्षेप में विंबलडन से क्या समाचार है?
सर, विंबलडन की जहां तक बात है तो एंडी मरे का आज मैच होगा जर्मनी के ब्राउन से, जो कि हमेशा लंबे बाल की तरफ से जाने जाते हैं। और इंडिया की भागीदारी भी आज है, मेंस डबल में इंडिया के दिविज शरण और पूरव राजा भिड़ेंगे ब्रिटेन के एडमंड और पोर्चुगीज प्लेयर सौसा के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद विदित मेहरा। और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौते हुए हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि रूस और चीन उत्तर कोरिया के परमाणु मुद्दे का ताकत के दम पर समाधान के विरोध में है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है कि संघर्ष की संभावना को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बीबीसी समाचार
दिन भर को यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया, रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।